Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸತಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತ್ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ನಿತ್ಯಲೀಲಾಪ್ರವಿಷ್ಟ ಜಯಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸತಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಅನಂತಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ ಸಮವೇತ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದಕಿ ಗ್ರಂಥರಾ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣಕಿ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿಪ್ರಮಾನಂದೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಂ ಉದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ ಸೆ ಪಾಠ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 17-25 ತಕ್ ಆಠ ಆಠ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಕ್ತಿಯ ಚಲ್ ರಹಾಯ್. तो श्लोक नंबर 25 बोर्ड में लिखा है, उसको आवृत्ति करेंगे. विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणां सेना कार्यार्थे संभविष्यति. विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणां सेना कार्यार्थे संभविष्यति. विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणां सेना कार्यार्थे संभविष्यति.
विष्णुर्माया भगवती
ಶಬ್ದಾರ್ಥ. विष्णुर माया,
भगवान विष्णु की शक्ति,
भगवती भगवान के ही, भगवान के समकक्ष भगवती नाम से जानी वाली, जया जिससे सम्मोहितम मोहित होकर के जगत सारे जगत भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों आदिष्टा आदेश पाकर प्रभुणा स्वामी के द्वारा अनसेना अपने विभिन्न शक्ति वाली कारकों के साथ कार्यार्थे काम करने के लिए संभविष्यति जन्म लेगी। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पद पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के अनुरोध पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपने विविध शक्तियां सहित प्रकट होगी। तात्पर्य पराश शक्तिर विविधे वसूयते। श्वेत सुतर उपनिषद में कहा गया है कि भगवान की शक्तियां विविध नाम से पुकारी जाती है, यथा जोग माया और महामाया, किंतु अंततगत्वा भगवान की शक्ति एक है। ठीक इसी तरह जिसी तरह की विद्युत शक्ति एक है, यद्यपि वह शीतल करने तथा गर्म करने दोनों का ही कार्य करती है, भगवान की शक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगत में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में यह जोगमाया के रूप में कार्य करती है और भौतिक जगत में वह महामाया के रूप में कार्य करता है। इस तरह जिस तरह विद्युत शक्ति हीटर तथा कूलर दोनों में काम करती है, भौतिक जगत में यह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से अधिकाधिक वंचित करने वाली है। कहा गया है जया सम्मोहितो जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मकम। बद्ध जीव भौतिक जगत में अपने को तीन गुण की सहज उपज मानता है, यह अध्यात्म बुद्धि है। हर व्यक्ति भौतिक शक्ति के तीन गुण से अपने को संबंध रखने के कारण अपने को अपना शरीर मानता है। कोई अपने को ब्राह्मण तो कोई अपने को क्षत्रिय मानता है और कोई वैश्य या शूद्र। वास्तव में न तो कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य और न शूद्र, वह तो भगवान का अंश है, मामेव अंश। किंतु भौतिक शक्ति महामाया से प्रच्छन्न होने के कारण वह भिन्न भिन्न ढंग से अपनी पहचान करता है। किंतु जब बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो वह अपने को कृष्ण का नित्य दास मानता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो ही शक्ति जोग माया उसे शुद्ध बनने और अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाने में अधिकाधिक सहायक बनती है। जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त, भगवान प्रत्येक अवस्था में सर्वोपरि है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया मया अधिक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान के ही आदेश से महामाया बद्ध जीव पर अपना प्रभाव दिखलाती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वह ग्रस्त जीव प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर अपने को उन कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होती है। बद्ध जीव में किसी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, किंतु मनुष्य मोहग्रस्त होने तथा माया के वशीभूत होने से मूर्खतावश अपने को स्वतंत्र मान बैठता है। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। किंतु जब भक्ति करने के कारण बद्ध जीव मुक्त बनता है तो उसे विभिन्न रसों में तथा दास्य साख्य वात्सल्य रस तथा माधुरी रस में भगवान के साथ अपने संबंध का आस्वादन करने का आधिकारिक अवसर प्राप्त होता है। इस तरह भगवान की शक्ति विष्णु और माया के दो रूप है, आवरणिका तथा उन्मुख। एवं भगवान जब भगवान अवतीर्ण हुए तो उनकी शक्ति उनके साथ आई, उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने यशोदा देवी की तथा भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधियों के साथ योग माया के रूप में कार्य किया, किंतु कंस शाल्व तथा अन्य असुरों के साथ उसने भिन्न रूप से कार्य किया। भगवान कृष्ण के आदेशों से उनकी शक्ति योग माया उनके साथ आई और उसने देश काल अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित किए। कार्यार्थे संभविष्यति, योग माया ने भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से कार्य किया, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई। महात्मानं पार्थ दैविंग प्रकृतिमा आश्रितः, भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत महात्मा जन योग माया के द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा जन महामाया द्वारा निर्देशित होते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीजितपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। लिय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्री जन्माष्टमी उपलक्ष्य में ये भगवान की लीला प्रकरण के ये जो दसम स्कंद के हम चर्चा दो दिन से कर रहे हैं। कल हम यहाँ तक चर्चा किए थे कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने अपने कृष्ण लीला को सुनने के लिए अपने प्रकृष्ट लालसा व्यक्त किए थे और उसके कारण उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे विशेष लीला को सुनने के लिए, और उस प्रश्न को सुन करके श्री सुकमुनि किस प्रकार महाप्रभावित हुए, यहाँ तक कि सोनकादि ऋषियाँ भी प्रभावित हो गए। और इस कथा के प्रभाव के बारे में सुखदेव गोस्वामी साधुवाद करते हुए कहते हैं, ये कृष्ण विषयक कथा की प्रश्न ही इतने प्रभावशाली है, ये तीन लोक को पवित्र करने वाली गंगा जैसे जो पूछता है, जो सुनता है, जो बोलता है, तीनों को पवित्र कर डालता है। तो अब ये साधुवाद आदि करने के बाद सुखदेव गोस्वामी अब कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं 17 नंबर श्लोक से। तो इसमें ये बताते हैं कि एकदा एक बार ऐसे घटना हुआ था, पृथ्वी देवी आपने आधिदैविक स्वरूप को धारण करके, गो माता के रूप को धारण करके, उन्होंने दुखी होकर के रोती हुई विलखती हुई, अपने शरीर दुगली पतली हो चुकी थी, उन्होंने देव सभा में पहुंचती है अपने पुकार बताने के लिए। तो गौरमुखी पृथ्वी को गौमुखी इस रूप में वर्णन आया है। तो इसमें हम जान सकते हैं कि पृथ्वी जिसको हम मिट्टी जड़ मानते हैं वो जड़ नहीं है, वो भी चेतन है। प्रत्येक वस्तु का तीन प्रकार के रूप होता है, एक आधि आत्मिक, एक आधि दैविक, एक आधि भौतिक। आधि आत्मिक आत्मा के अंश से जिस प्रकार के उनको स्वरूप, ये आधि आत्मिक स्वरूप है। जैसे अभी हम पढ़े थे, जिबेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हमारे आधि आत्मिक स्वरूप है। आत्मा सब, जीवात्मा सब भगवान के नौकर है। और आधि दैविक, देवताओं के हिसाब से भी हमारा रूप हमको पता नहीं है, और आधी भौतिक जो अभी हम मान बैठे हैं अपना आईडी दिखाते हैं, है ना। नहीं तो किसी को भले पता ना हो या हो, लेकिन है तो तीन प्रकार के परिचय उनके। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी माता का जो आधि आत्मिक रूप है वो भगवान की नित्य प्रेयसी है, भगवत पत्नी है, भूदेवी भूदेवी सुदेवी हमेशा भगवान के साथ रहती है। तो ये उनका आध्यात्मिक परिचय रूप है। आधि दैविक रूप में वो गाय है, गो रूप में आधि दैविक रूप में रहती है, और आधि भौतिक रूप जो हम देखते हैं ये मिट्टी धरती आधि भौतिक। तो भले हम उसको देख पाते हैं, हमारा जड़ चक्षु देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, लेकिन वो है आधिदैविक रूप में है, चेतन है, समझती है, अनुभूति होता, नहीं तो उसको दुख नहीं लगता। आज क्यों जाता उन्होंने रोड होकर के, यही प्रमाण है। श्लोक इस प्रमाण करता है कि पृथ्वी माता को अनुभूति होता, अनुभव होता है। अगर उसको अनुभव नहीं होता, आज उन देवस्वाह में रोती बिलखती जाती थोड़ी। कथा प्रारंभ इसी में करते हैं कि भूमि देवी ने पीड़ित होकर के, बड़ी शोकक्रांता होकर के देवसभा में मरु पर्वत पर होती देवसभा में वहाँ पहुँची, तो मतलब उसको दुख हुआ ना, तभी तो गई, दुख का अनुभूत हुआ ना। ये जड़ पदार्थ को तो अनुभूति हो नहीं सकता, तब तो दुख हुआ उनको। तो ये सचमुच हम जो जड़ चेतन के तारतम्य में करते हैं उसके इसलिए है क्योंकि चेतना का अभिव्यक्ति किसमें कितना है वहाँ, नहीं तो संपूर्ण जगत है किसका, वही पूर्ण चेतन का तो है। अरे वही जगत के रूप में, प्रकृति के रूप में, जीव के रूप में तो वही प्रकट हुआ है। वो तो प्रेत आड़े में तेड़े में वही तो है, उनके अलावा तो कुछ है ही नहीं। वही अपने को विस्तार करके रखे हैं, तो वो तो पूर्ण चेतन है, फिर जड़ हो कैसे सकता है कुछ, तो फिर कैसे समझे उसको। उन परमात्मा भगवान के जब उनके गुण कभी कभी घनीभूत होकर के उनके सत्ता, सत्ता समझते ना, प्रभाव, उनके सत्ता पोटेंशियल कभी घनीभूत होता है, कंडेंस होता है, घनीभूत होकर के तमगुण को प्राप्त करता है, तो उसमें गुण वैषम्य होने लगता है, गुण के विकार होने लगता है। जैसे दूध को जमा दो थोड़ा दही डाल करके तो विकार हो जाएगा ना, वो दूध में वो दूसरे कुछ बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब सत्ता घनीभूत जम जाता है, जम करके तमगुण को मतलब खट्टाई थोड़ा अंश आ गया उसमें, तो फिर वो अपना स्थिति में दूसरे कुछ बनेगा। तो यही इसमें गुण वैषम्य होता है सृष्टि काल में, सृष्टि काल के समय में इस प्रकार गुण विकार के कारण वो फिर परिवर्तित हो जाता है, वही सत्ता दूसरे परिवर्तित होता है। वो परिवर्तन काल समय में, वो सृष्टि काल के समय में, वो जो चेतना का अभिव्यक्ति किसी में कितना हुआ, कहाँ पर किस वस्तु में कितने चेतना के परसेंटेज आया, इसी के हिसाब से उसको माना जाता है। उसी को गणना करके विद्वान लोग कड़ा गणना करते हैं। यद्यपि शुद्ध पूर्ण चेतन वो तो निष्कल है, उनका कोई कलाफला होता ही नहीं, वो प्रकृति परे है, गुण से परे होते हैं, लेकिन उनमें कला की कल्पना इसलिए जगत को लेकर के आ गया। हम जागतिक हैं, हम जगत के उदाहरण में समझ ही नहीं सकते, जगत की संपर्क के कारण उनमें कला के कल्पना किया गया है। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध पूर्ण चेतन को पूर्ण 16 कला माना गया, कितना 16 कला है, मतलब पूरा को पूरा 16 नाम बोलते ना कभी कभी, सोलाना को सोलाना ना। हाँ आजकल तो रुपया 100 रुपया को पूरा मानते हैं, लेकिन पहले जमाने में लोग जानते हैं सोलाना है ना, नहीं जो आना में होता था 8 आना मनुष्य आधा, 4 आना मनुष्य 1/4, 2 आना अभी भी समर्स में तो आता है, लेकिन अभी तो इसे 16 आना मतलब कंप्लीट पूर्ण चेतन 16 आना चेतन युक्त होता है। तो अभी उन पूर्ण चेतन के, उस चेतना के अभिव्यक्ति बंटते समय में कहाँ पर कितना व्यक्त हुआ, उसी के हिसाब से कला गणना किया जाता है, उनके प्रकाश होता है। और जड़ चेतन का फर्क वहीं से शुरू हुआ, जिनमें चेतना के व्यक्ति रूप दिखाई नहीं पड़ा, चेतना के व्यक्त के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, उनको हम क्या कहते हैं, जड़, दिखाई नहीं पड़ता। टेबल है, मारने से कुछ नहीं बोलता, गाली देने से कुछ और नहीं होता, ये तो जड़ है। चेतना का अभिव्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं होता, लेकिन ऐसा मत समझना कि चेतना नहीं है, है लेकिन मैनिफेस्ट नहीं होगा। उसके ये व्यक्त भाव नहीं दिया, चेतना उसमें नहीं डाला व्यक्त करने के लिए। यद्यपि चेतन की मैन्युफैक्चर है, ये चेतन ने बनाया, लेकिन उसमें चेतना के विकास की शक्ति नहीं डाला, उसे मैनिफेस्ट नहीं किया। और कहाँ का मैनिफेस्ट किया है, सब में समान नहीं किया है, तारतम्य है। तारतम्य के कारण विद्वान लोग ने उसको कड़ा के रूप में गणना करते हैं। हम देखते हैं इस सृष्टि में तरु से लता उद्भिद पर्यंत जितने वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे जिसको मानते हैं, उनमें एक कला के विकास हुआ। एक कला मतलब उनमें केवल कोशिका, एक अन्नमय कोश उसमें विकास हुआ, केवल अन्नमय कोश उसमें है तरु से उद्भिद पर्यंत। तो इसलिए उन लोग ने आहार, निद्रा, द्वेष, स्नेह आदि भी प्रकट करते हैं, तरुलता भी, यस वो करते हैं, उससे ज़्यादा अधिक व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये अरणमय कोष है, खाते हैं, बढ़ते हैं, पोषण होते हैं, इसी तरह इतना लिमिटेशन उनका है। तो उनको एक कला विशिष्ट अरणमय कोष कहा गया ये प्राणी। उससे बढ़कर के अब दो कला विशिष्ट उनको कहा जाता है जिनमें प्राणमय कोष का विकास हो चुका है। जिन प्राण कोष का विकास हो गया है वो लोग स्वेदज हैं, उद्बीज नहीं है, वो क्या है, स्वेदज। सभी के अपने अपने होते हैं, आप समझ सकते हैं, वो स्वेदज प्राणी सक्रिय होते हैं, उद्बीज सक्रिय नहीं होते, वो चल फिर सकते हैं, सक्रिय है, क्योंकि उनमें अन्नमय कोष तो है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्राण कोष जागृत हो गया, तो उसके कारण वो सक्रिय होते हैं। वो दो कला विशिष्ट हुए। तो तीन कला विशिष्ट वो होंगे जिनमें मनोमय कोष आ गया, मन का कोशिका जिसमें विकास हो गया, वो तीन कला विशिष्ट वो है, वो होते हैं अंडज प्राणी। अंडज, अंड से जात होते हैं, वो पक्षियाँ आदि वो संकल्प विकल्प भी कर सकते हैं, मन के उपयोग करते हैं वो लोग, बाकी उन्हें पहली बार नहीं कर सकते उसको। तो अंडज प्राणी तीन कला विशिष्ट होते हैं, उसके ऊपर में चार कला विशिष्ट वो प्राणी होते हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान कोशिका विकास हो चुका है, बन चुका है। उस विज्ञानमय कोष वाले पिंडज प्राणी, जो पिंड से उत्पन्न होते हैं, उनमें बुद्धि के उपयोग करना देखा गया, बुद्धि के इस्तेमाल करते हैं, पशु आदि जैसे पिंड से उत्पन्न होते हैं वो बुद्धि के इस्तेमाल भी करते हैं। तो केवल मनुष्य शरीरधारी जो जरायु जो प्राणी है जिनमें एक्स्ट्रा पांचों पांच कला विशिष्ट में जिसमें आनंदमय कोष का कोशिका विकास हो चुका है, बाकी कोष तो है ही है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तो है, प्लस आनंदमय कोष आ चुका है। आनंदमय कोष केवल मनुष्य शरीर में प्रकट हुआ है, विकास हुआ है। तो इसीलिए केवल जरायुज में मनुष्य एक है, ये सब कुछ पिछले काम करते हुए आनंद को प्रकाश कर सकता है, बाकी मनुष्य के अलावा कोई प्राणी 84 लाख से 80 लाख गिन लीजिए, वो अपने आनंद को प्रकाश नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते हैं। कोई घाय भैंस किसी को ले लीजिए, कहते ना बहुत आनंदित हो गए तो शांत रहेंगे, नहीं तो दही की चेष्टा से कूदेंगे, दौड़ेंगे, ऐसी कुछ करेंगे, हंस नहीं सकते। बिना शारीरिक चेष्टा के बिना अपने आनंद को प्रकाश संभव नहीं, क्योंकि आनंद में कोष उसमें है ही नहीं, वो कोशिका उसमें है ही नहीं, तो आनंदित हो ही नहीं सकते। तो आनंद को बिना कुछ हाथ पर हिलाए दांत दिखाकर हंस देना वो केवल मनुष्य के कार्य है, क्योंकि भगवान ने कृपा करके उसमें विज्ञानमय के साथ, ज्ञान के साथ आनंदमय कोशिका दी, इसीलिए आप सब 32 दांत दिखाते हैं। वो ना होता है हाँ कुछ नहीं होता बाबा। ना हो नहीं सकता, गधे जब रेंगता है हो रोता है कि हंसता है कोई डिसाइड नहीं कर सकता बेचारा। क्या शब्द करता है, क्योंकि आनंद में कोष केवल मनुष्य में है। और पांच कला विशिष्ट है, और उससे ऊपर में इसे पार्थिव मनुष्य शरीर में ऐसे देखा गया कि केवल आठ कला तक विकास हो सकता है। कोई पार्थिव जैसे मनुष्य शरीर है, ये पार्थिव मतलब पंचभौतिक है, पृथ्वी से बना हुआ है शरीर, पृथ्वी से बना शरीर में मैक्सिमम से मैक्सिमम लिमिट आठ कला हो सकता है, आठ से ऊपर तो फट जाएगा, वो संभाल नहीं सकता। और वो भी आठ कला किस में होता है, छह कला जिसमें आ जाता है वो तो माना जाते हैं कि महाज्ञानी पुरुष माने जाते हैं, छह कला में विद्वान पुरुष माने जाते हैं। जनरल पब्लिक वर्ण मनीष से लेकर के जो हस्त आनंद प्रकाश ने पांच कला, छह कला उसमें होते हैं जो रियली इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे प्रभु जी अग्रह होते हैं। तो उसके बाद में सात कला उनको होता है जो कारक पुरुष होते हैं, साइंटिस्ट अगर तो छह कला तक जाते हैं। कारक पुरुष मतलब जो जदा कदा धरती पर दिखाई पड़ते हैं, इतने महिमा समृत, इतने धी शक्ति, इतने पावरफुल, जदा कदा देखे पड़ते हैं सात कला विश्व। आठ कला तो केवल उन लोग के होते हैं जो देवताओं के लगभग समान हो जाते हैं, हाँ उनकी चिन्मयता आ जाता है उनमें, हाँ जिनके शरीर में चिन्मयता प्रकट हो जाता है वो कोई सामान्य नहीं रहते, असामान्य अतिमानवीय कार्य करने वाले आठ कला, वो आठ के बात को धारण नहीं कर सकते ना। उसके बाद में फिर देव शरीर धारण करना पड़ेगा, पृथ्वी के बना हुआ शरीर का वो पोटेंशियल नहीं है कि उसके ऊपर धारण कर पाए ना, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। फिर ऊपर से मनुष्य से हाई पोटेंशी 9-10 कला तक तो देवता तक धारण करते हैं, 10 कला, 10 के ऊपर तो देवता भी नहीं धारण कर सकते। मनु आदि जो होते हैं, सनत कुमार, सप्तऋषि, मनु, लोकपाल, ये लोग जो हैं ज़्यादा से 10 कला तक जाते हैं। 10 से ऊपर तो वो भी नहीं जा सकते, 10 के ऊपर 11 तक तो फिर अवतार पुरुष ही कर पाते हैं, और दूसरे नहीं कर पाते। और 11 से लेकर के 11-12 ये देव शरीर में, माने देव शरीर नहीं, वो भगवत अवतार शरीर, भगवत स्वरूप में हो पाता है। लेकिन 12 से 16 तो ये चार तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो पूर्णावस्था अवतार है वो उनके पास हो सकता है, तो किसी हो ही नहीं सकता किसी से ना, ये सब 11-12 तक जाएंगे। जितने बाकी अवतार हैं भगवत अवतार हैं लेकिन 11 में रहते हैं, 12 में तो फिर तारतम्य दिखता है, तारतम्य नहीं किया जा सकता, जो द्वादश कला संपन्न है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप ना, ये सब समान है, ये सभी समान द्वादश कला युक्त, केवल उनके पोस्ट उनके कार्य को देख करके अलग अलग मानते हैं, लेकिन ये सभी समान शक्ति संपन्न होते हैं, सब भगवत स्वरूप होते हैं। लेकिन 12 से ऊपर फिर उनके प्राइवेट अफेयर है, वो तो उनका ऊपर किसी की बस नहीं होता भारत भगवत। तो इस प्रकार से जो चेतना के अभिव्यक्ति के कारण हम किसको जड़ और चेतन मानते हैं, तो यद्यपि हमारे जड़ दृष्टि से हम किसको जड़ मानते हैं किसी को चेतन मानते हैं, लेकिन ये हमारे दुर्बुद्धि है, लेकिन चेतना तो उसमें भी है, तो कभी उसको कर सकते हैं, हम दिन जान नहीं सकते। भूमि देवी भी चेतन है, नहीं तो कैसे रो करके देवसभा में गई, उनको अनुभूति तो हुआ ना, दुख सुख का अनुभूति ना हुआ मतलब वो चेतना है ना, चेतन के प्रकाश है उसमें। और इतने प्रकाश नहीं कि पेड़ पौधे भी अनुभूति करते हैं लेकिन जान नहीं सकते, अरे वो गई रूप बना करके अपनी दैविक रूप में, भूमि गो रूप में गई, जाकर सुख प्रकट की, तो मतलब बाकायदा ऐसे हुए, हमको भले समझ में ना आए। तो ये दशम स्कंद में प्रथम अध्याय में इस बात को समझा दिए कि केयरफुल, ये सभी चेतन है, ऐसे मत समझो धरती पर। तो जाकर के क्या वक्त की देव स्वभाव में आपने दुख व्यक्त की, क्या दुख, ना मैं बहुत भाराक्रांत हो चुका हूँ, बहुत बोझिला हो चुका हूँ, मेरे ऊपर हाई लोड बहुत हो चुका है। एक बात यहाँ चिंतन करने के योग्य है, इस धरती पर पृथ्वी पर जितने शरीर है, पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य पर्यंत जितने शरीर है, सब पार्थिव शरीर है ना, पार्थिव शरीर मतलब मिट्टी के धुंधे, मिट्टी से बने तो हुए हैं, है ना नहीं। अरे भाई मिट्टी के कोई मूर्ति बना के रख दो या शुद्ध मिट्टी के रूप में रख दो, मिट्टी तो मिट्टी है, उनका वेट तो इतना ही है ना नहीं। भैया जैसे कभी कभी कहते हैं ना, एक आदमी घोड़े पर बैठकर जा रहा था और उनके गंठरी, उनके जो बक्सा था बोझा, उसको भी घोड़ा पर रख कर लेकर जा रहा था। लोग देखे बोले कितना निष्ठुर है ये मोटा आदमी है, ये घोड़े को बैठा है और अपना बोझा भी उसमें डाल के रखा है, बहुत निष्ठुर है आदमी। तो सुना वो खराब लगा, हाँ सही में मैं डबल लोड देता हूँ घोड़े के ऊपर, तो क्या क्या बोझा को अपने ऊपर ले लिया, आपने सर में बैठा है घोड़े के ऊपर लेकिन बोझा घोड़े के ऊपर न रख करके क्या क्या आपने कंधे सर के ऊपर ले लिया, तो क्या घोड़ा के ऊपर बोझा कम हो जाएगा? तो ही हमारे बुद्धि होता है। अब ये भूभार कैसे हो सकता है? धरती के ऊपर चाहे आप कितने 10 अरब 10 करोड़ 10 खरब भी मनुष्य हो जाए, वो हो तो उन्हीं के ऊपर, तो उसके ऊपर भार कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? तो फिर भू के ऊपर धरती के ऊपर भार कैसे हुआ? सोचने लायक बात है ना, भार तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सारे उन्हीं के ही भार है। अरे उनको मूर्ति के रूप में रखो या शुद्ध मिट्टी के रूप में होते है, तो तुम्हें ही इतना लोड इतना ही तो है, कुछ तो नहीं, नहीं तो ही बना, तो भार कैसे कहा जा सकता? लेकिन ये भी समझने लायक बात है, हम जैसे शरीर है, अगर हमारा शरीर में फाइलेरिया, समझते हैं कभी डिजीज होता है, हमारे पैर इतने मोटा हो जाता है कभी कभी, देखे ना कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं ना, एलिफेंट बोलते हैं, एलिफेंट ही ऐसे, मैं उसको फाइलेरिया समझता हूँ। पहले के जमाने में वर्ड था फाइलेरिया, आजकल नया वर्ड सा निकला हाथी के पाद की जैसा तो एलिफेंट लगा दिए, जो भी हो एक बीमार है, और जिसका हो जाता है तो वो इस अंग को अपना भार समझता ना नहीं, समझेगा भैया? अब कोई किसी के बहुत मोटापन आ गया, बहुत सारा चर्बी हो गया, 1.5 क्विंटल वजन हो गया, वो अपने शरीर को भारी महसूस करेगा ना नहीं, है तो वही शरीर, लेकिन इतने मेद चर्बी इकट्ठा हो गया भारी महसूस करेगा। केवल इतना नहीं, आप दुगले पतले हो लो ठीक है, एक पैरालाइज हो जाए एक अंग, काम ना कर निष्क्रिय हो जाए, आप उसको अपना भार मानेंगे ना नहीं मानेंगे? अरे एक अंगूठी में अगर कैंसर हो जाए उसके ऊपर भार मानेंगे, उसे काट कर फेंकू मानेंगे ना नहीं? तो ये इस प्रकार से शरीर हमारा होते हुए भी किसी प्रकार के विकार के कारण हम अपना भार समझ रहे हैं उसको, और केवल ये तो ग्रस भार है, शटल भार भी और एक होता है, किसी के ऊपर आप जो चीज को नहीं चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, इसी प्रकार कोई आपने प्रतिकूल बात को बारंबार कोई आपके साथ चर्चा करे, आपके साथ कहे गालियां दे, तो आपके ऊपर मानसिक भार हो जाना नहीं, पूछ लो इतने भार हो गया कि मुँह ऊपर नहीं उठ, है ना नहीं? कोई भारी अपमान सूचक बात हो जाए मुंह उठाने के लायक नहीं बनेंगे, यही सही रहेगा, इतना भारी हो जाता है। अरे वेट कुछ नहीं बढ़ा लेकिन इतने भार बढ़ गया, ये सटल भार है। तो इस प्रकार भार को समझना होगा, तो पृथ्वी देवी के ऊपर भार मतलब ऐसे कोई ग्रास वेट नहीं बढ़ा था उसका, जो पृथ्वी देवी चाहती है सुखी होती, जो उनके दुख के बारे में इतने पृथ्वी देवी जब कोई भगवान की भक्ति करते हैं, सब समाज में सही भाव से सदाचार से रहते हैं, वो बिल्कुल लाइट फील करती है। भजन करने से कितने नाचो कितने मंदिर बनाओ उनको बिल्कुल लाइट फील होगा, लेकिन अन्याय पाप कर्म करेंगे और वो आतंकवादी खूब बढ़ जाएंगे और टेंशन बढ़ जाएगा उसका, जैसे निष्क्रिय हो जाए कोई शरीर, एलिफेंटासिया हो जाए, ऐसी समझती हो उनको भार बढ़ जाती। तो इस प्रकार पृथ्वी देवी कि उसी समय 28वां द्वापरांत के समय में धरती पर इतने अधिक तमोगुणी राक्षसी राजा का आसुरियों के आसुरी सब लोग राजा बनकर के आ चुके थे, वो कहा क्या जाए, आपने सैन्य शक्ति कंपटीशन में बढ़ाते थे, और सैन्य शक्ति बढ़ाना उचित है, हम नहीं मना करते हैं कि आर्मी की जरूरत नहीं है, वो जरूरत है प्रतिरक्षा करने के लिए और दूसरे लोग बदमाशी लोगों को ठीक करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन किसी को आतंक देने के लिए, कष्ट देने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसको सीमा से अतीत बढ़ाना, ये तो भारी है। कि हम जानते हैं जो आर्मी में एक्सपेंस तो पूरा 50% ज़्यादा होता है, वो कोई प्रोडक्टिव थोड़ी है, वो उत्पादक विभाग नहीं है, उसमें तो केवल लसी लस होता है, कुछ प्रोडक्ट होता ही नहीं उसमें। लेकिन फिर भी उनको सही उपयोग करना और जितना आवश्यकता इतने सैन्य रखना, आवश्यकता से ज़्यादा और इच्छा से ज़्यादा उपयोग करना, ये भारी बनता है और भूमि का भार ही बनता है। इतने आसुर प्रकृति के राजा और इतने सैन्य शक्ति सीमा से बढ़ाए, और दूसरे को डराने का आतंक फैलाने के लिए आपने स्पर्धा आयाम सुवर्ण सु इसको दिखाने के लिए जो शक्ति को बढ़ाते हैं खूब। तो अब आप जानते हैं समाज में भगवान ने शक्ति, तो ये भौतिक शक्ति तो कोई शक्ति नहीं है, जो तपोबल महाबल तपस्या के शक्ति भगवान दिए हैं। तपस्या करके कोई व्यक्ति विशेष विशेष शक्ति को प्राप्त कर सकता है। आपने शरीर को अगर तपस्या में लगा दे तो इतने तप कर सकता है कि और पार्थिव शरीर का लिमिट है ब्रह्मलोक पर्यंत। ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा ठीक करने के लिए, भैया ये क्या कर रहा है तुमने, यहीं तक लिमिट है, उससे आगे तो नहीं जाया नहीं सकता। तो कभी कभी आसुरी शक्ति महातमोगुणी शक्ति भी तपस्या करते हैं और इतने उत्पीड़क तपस्या करते हैं हम सोच भी नहीं सकते, इतने खतरनाक तप करते हैं, बड़ी जिद ढींट लेकर तप करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को आना ही पड़ता है क्योंकि पार्थिव शरीर का तपस्या का लिमिट है ब्रह्मलोक, उसके ऊपर जा नहीं सकता, तो आकर फिर कंट्रोल करना पड़ता है उनको, बर्फ हर दे करके कुछ भी करके जो भी करके संभालना पड़ता है उनको। तो इसी प्रकार हम देखते हैं बड़े बड़े आसुर लोग भी महातमगुणी ऐसे ही तप करके ब्रह्मा जी को पटा करके वो क्या क्या काम करते हैं। और जब सृष्टि की एक मर्यादा होता है, एक नियम होता है, भगवान ने मर्यादा रखकर, और वो मर्यादा व्यतिक्रम कोई करें, अतिक्रमण कर ले इस प्रकार से तप शक्ति आदि प्राप्त करके, तो कभी कभी अतिमानव, कभी कोई लोकपाल इंद्र आदि अपना काम करके उनको मिटा, जो उनके पावर से बाहर हो गया वो हम नहीं कर सकते सार, अब मैं ही काम करने के लिए हूँ लेकिन मेरे से बस के बाहर होता है। कभी कभी टेम्पल प्रेसिडेंट भी कंप्लेंट करते हैं मेरे बस के बाहर है, बात नहीं मानता मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार से जिनको दायित्व दिया गया सृष्टि रक्षा का, रखण वेखण का, उनका कभी कभी भारी पड़ जाता है, वो इतनी बदमाशी करते हैं और वो तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि चुनौती देते हैं उनको। तब फिर सृष्टि की मर्यादा रखना जो मेंटेनर जो हैं उनको फिर आना पड़ा, भाई ठीक है मैं प्रोग्राम करता हूँ आता हूँ, तो उनको आना पड़ता है। तो वो लेकिन ये बदमाशी के करने के लिए नहीं आते, वही बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं काम, उनको तभी भी आना नहीं पड़ेगा, वहीं बैठ करके फोन करके सवार कर सकते हैं उन लोगों को। लेकिन वो तभी आते हैं क्योंकि वो केवल असुर मारण के लिए नहीं आते हैं। जब अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मैं बार बार आता हूँ तेरे साथ में, क्यों आते हैं, वाई आर यू कमिंग, क्या जरूरी है आपको आना, तो भगवान ने अपने आने का कारण गीता में ही बताया, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदि धर्म का ग्लानी होता है अधर्म का बोलवाला होता है तब मैं आता हूं। आकर कर क्या रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, जब आते हैं, जो धर्म घट जाता है अधर्म बढ़ जाता है, आप बोले आते हैं, आकर क्या कर रहे हैं अपने। तो भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, जुग जुग में जाना पड़ता है एवरी युग में धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्कृतियों को साफ करने के लिए और साधुओं को पोषण करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं, कहने में उनका ध्यान दो बात को, बोलते मैं आता हूँ सबसे पहले, बोले क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड उसको सबसे पहले बोलते हैं क्या, परित्राणाय साधु नाम, बोले मैं साधुओं के लिए आता हूँ, साधुओं को पोषण करने के लिए सुख देने के लिए मैं आता हूँ, और दुष्कृति नाम च शब्द लगा दिए, बोले वो भी उनका भी काम निकाल देता हूँ, उनका भी तोड़ मरोड़ कर देता हूँ, जब मैं आता हूँ तो क्या करूँ। उसके वो मेरा साइड इफेक्ट है, वो मेरा आने का काम नहीं था, लेकिन वो भी मर मर जाते हैं, मर मिट जाते हैं, च शब्द इसलिए कहें ऑल्सो, वो भी कर लेता हूँ, तो मतलब वो उनका उनके लिए वो आते नहीं हैं, उनको तो वहीं बैठे कर सकते हैं, लेकिन आना पड़ता है अपने प्रेमी भक्तों के लिए, ये हट पकड़ लिए, प्रभु आपको मैं अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, प्रभु प्लीज आपको ओ वहाँ आना नहीं पड़ेगा, बेटा बनने के लिए दूसरा कोई उनका बेटा बन ही नहीं सकता, उनके तरह कोई पुत्र तो बन ही नहीं सकता, उनके तरह तो केवल वो ही है। अब वो जो राजी खुशी हो गए तो मुझे आना पड़ेगा, क्या करूँ, वो मेरे बाप बनना चाहता है, वो मेरा भाई बनना चाहता है, वो मेरा मित्र बनना, तो उनको आना पड़ेगा। और जब आते हैं तो बदमाशियों के काम कर लेते हैं, इसलिए भी शब्द लगाए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम। वो विनाश करना च साइड इफेक्ट है, अल्सो काम कर लेता हूँ। वो दोनों काम करता हूँ क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं काम करता हूँ, धर्म की स्थापना करते हैं। चौथा अध्याय भगवान गीता में ये धर्म स्थापना की बात किए, और अष्टादश अध्याय गीता के कंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन में बोले सर्वधर्मान परित्यज्य। उसको सुनकर कोई भी कन्फ्यूज होगा, बोला साहब आप धर्म को परित्याग कराने आए थे या धर्म की स्थापना करवाने आए थे? यहाँ बोलते छोड़ो सारे धर्म को छोड़ो। अरे आप छुड़वाने आए थे ना पकड़वाने आए थे? आप बोलते हैं पहले बोले धर्म को पकड़ने स्थापना करने के लिए, वो बोलते थे लिमिट छोड़ो सब। ये मन में भावना होता है ये क्या भाई, लेकिन ये कोई गलत नहीं है। वो भी तभी भी धर्म की स्थापना करने के लिए कहते हैं जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वो भी कहते हैं सारे धर्म को परित्याग कर दो छोड़ दो, वही छोड़ना ही धर्म है, सारे धर्म को छोड़ना ही धर्म है। तो फिर धर्म कैसे होगा? वो दूसरे सेकंड लाइन में बोलते हैं क्या धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकं शरणं व्रज, वही केवल भगवान के शरण में जन्मा है, वही एकमात्र धर्म, वही परम चरम धर्म है, उसी को स्थापना करने के लिए बाकी को छोड़ना तो पड़ेगा ही। भैया तो उसे पानी में डूबकर मर रहा है, आग में निकल करके चल रहा है, आग में डल करके अरे चिल्ला रहा है, तो आग से बाहर आओ, नहीं तो बच नहीं सकता। पानी में डूबे पानी से बाहर उठो, वहीं रह करके बच कैसे सकता? तो इसलिए जिस धर्म में आप परेशानी में हो वो छोड़ो उसको लिमिट। तो एक ही धर्म है जो आपके लिए लाइक है, केवल परम धर्म, सरेंडर ऑन टू मी, माम एकं शरणं व्रजः, यही एकमात्र परम धर्म है। इसी धर्म को स्थापना करने के लिए युग युग भगवान आते हैं, हर युग में केवल इसी धर्म के लिए, बाकी कोई धर्म नहीं है। ये सब हमने मन बनाया ये धर्म वो धर्म, वो छोड़ना पड़ेगा सबको, असली धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य इसलिए कहे। तो भगवान के अवतार इसी कारण से होता है, अवतरण लेते हैं, कभी कभी वही परम पुरुष स्वयं परम ब्रह्म भगवान इस प्रकार से आते हैं जब किसी के बात में नहीं बनता। तो वहाँ पर जब ब्रह्मा के देवताओं के सभा में पहुँचे तो ब्रह्मा जी भी अपना अभिष्म सत्यलोक में नहीं थे, धरती देवी सत्यलोक नहीं गई थी, वो मेरु पर्वत के ऊपर मीटिंग चल रहा था। उनको पता चला कि इसी समय जाऊँ, क्योंकि अब पता करते ना किस समय जाना जरूरत है। गो देवी अपने आध्यात्मिक देवी के रूप में वो गई, क्या देवता देव सभा बैठा था, ब्रह्मा जी प्रिजाइडिंग ओवर कर रहे थे वहाँ मेरु पर्वत के ऊपर, तो वहीं पर उन्होंने अपने आईडी कार्ड भेजी, बोले मैं आ गई हूँ। और वो बता गया कि बिल्कुल रोती हुई, बिल्कुल दुख प्रकट करती हुई, सब देख करके सारे देख करके उनके शोक को, एक स्त्री जब रोती है सबका अंदर करुणा प्रकट होता है। वो बोले बोले सब अपना जो डिस्कशन चल रहा था छोड़े, बोले आपको प्रायोरिटी देते हैं, बताओ बताओ क्या बात है। तो भूमि देवी ने अपने दुख को बताई, जब दुख सुने तो ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को बताए, सारे देवताओं के ऊपर में अधिपति तो पूरे इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के ब्रह्मा जी हैं, टॉप मैनेजर, उनके सामने बताई। तो ब्रह्मा जी ने सोचे भाई मैं तो बनाने वाला हूँ, है ना, नहीं मैं सृष्टिकर्ता हूँ, है कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन ये तो मेंटेनेंस की बात कर रहा है। धरती की मैं तो बना तो चुका हूँ, लेकिन अभी तो मेंटेनेंस का काम है ना, जो बना बनने के बाद क्या काम आता है, कंस्ट्रक्शन के बाद मेंटेनेंस आता है। बोले मेंटेनेंस का काम है, मैं तो मेंटेनेंस का काम मेरे जिम्मा में नहीं है, वो जो मेंटेनर है उनके पास भेजना चाहिए। लेकिन क्या मेंटेनेंस, डायरेक्ट मेंटेनेंस की बात कह नहीं रही, बोलते हैं कि असुर मेरे ऊपर अत्याचार उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको मिटाओ। तो जो असुर मारपीट करके सवर्ण पुलिस डिपार्टमेंट का, ये तो भाई शंकर का है, वो डिपार्टमेंट उनका है ना, बोले भगवान उनको दायित्व दे रखे हैं साफ कर दो। तो भाई उनको शंकर जी को देखकर भाई ये आपका डिपार्टमेंट है, इंद्र बोले आप भी लड़ाई करो और वो तो साफ कर ही देंगे, आप दोनों एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो शंकर इंद्र भी थे तो वो क्यों काम नहीं निपटाए, शंकर जी बोले हाँ हम एक्टिवेट होते हैं, मिटाने का काम जो हमको डिपार्टमेंट दे रखे हैं, प्रलय का काम, प्रलय खत्म फिर किसी को बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो साधु बच जाए, असाधु मर जाए, ये काम से नहीं होगा। सारे साफ पूरा क्लीन वर्ल्ड कर दूंगा मैंने। मैं एक्टिवेट होऊंगा तो फिर ये नहीं कि इसको बचा के रखना है, इसको कच्चा रखना है, उसको थोड़ा आधा करना है, उसको 50-60-70, उसको 100, उसको नहीं। ये मेरे से नहीं हो सकता भाई। मेरा तो हाई वेट का एनर्जी जाएगा, सांप सिलपट करके आ जाएगा, पूरा वायरस जाएगा, सारे बोर्ड खाली। डिलीट बटन दबा देगा सीधा। बोला हम डिलीट करने वाले हैं, हमें बचा फचा कर नहीं कर सकते। डिलीट वर्ड दबा में कुछ रह जाए सेव, ऐसे थोड़ी हो सकता, नहीं हो सकता। तो बोलते ये डिपार्टमेंट हमारा, हम डिलीट मार देते हैं सीधा। तब इंद्र, तुम मारपीट करो, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे अस्त्र शस्त्र गायब हो चुका है। तो इसीलिए दोनों को साथ में ले करके ब्रह्मा जी ने इंद्र और रुद्र दोनों के साथ बोले, आप दोनों भी जाकर प्रार्थना करो। मैं बोलने से बोले, तुम क्यों आ गए, तुम तो भाई सृष्टि करना था आपका काम जाए, तो आप दोनों जाओ। तो बोले, हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं चलता, हम ही सर प्लीज हेल्प अस। तो फिर आप दोनों को लेकर जाने से कहें। तो सारे देवताओं मुख्यतः इंद्र और रुद्र को साथ में लेकर के ब्रह्मा क्षीर सागर तट में जाते हैं। इमीडिएट वो मीटिंग कैंसिल के बोले, चलो उनका काम नहीं। क्षीर सागर तट में जाते हैं। इसमें ये पता चलता है कि भगवान के जो हायरार्की है, वो तो गोविंद तो छोड़ो, हम उनको सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनका हम तो प्रवेश नहीं है। उनके बाद में जो उनके द्वितीय विग्रह है बलराम, वहाँ भी हमारा बस नहीं चलेगा। उनके चतुर्विभ से द्वितीय प्रथम चतुर्विभ में काम नहीं चलेगा। दूसरे चतुर्विभ में वो संकर्षण में उनके एक्सपांसन होता है, और उसमें जो प्रथम पुरुष होते हैं जिनको कारणारणावसाय विष्णु, कारण सागर में सोने वाला विष्णु, यहाँ तक भी हमारे प्रवेश नहीं है। वो कांट बोलते हैं, हमारे रीच से बाहर है, आउट ऑफ रीच। बोले द्वितीय पुरुष भी, ओ मेरे बाप हैं, यहाँ तक मैं नहीं जा नहीं सकता। मैं गया था, बोले मैं जन्म के समय प्रयास खूब किया था जाने के लिए, अरे हजारों साल प्रयास कर भी पहुँच नहीं पाया, नाभि में नहीं पहुँच पाया, कहाँ गया, फिर वापस आकर बैठ गया। बोले चलो बेकार, वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करो, आकर बैठा। बोले वहाँ तक भी नहीं जा सकते। तो हमारे पहुँच केवल एक हीरोदक साहब विष्णु तक है, तीसरे पुरुष तक ही हम जा सकते हैं। वो क्षीर सागर में रहते हैं, ओ जन जन के घट घट के अंदर परमात्मा रूप में क्षीर साई विष्णु रहते हैं, वहीं तक हमारा अप्रोच है, इसलिए क्षीर सागर तक गए। और देवता हमारे जैसे नहीं है, यहाँ वर्णन किया क्षीर सागर के अंदर घुस गए, हम समुद्र को देखने से मर जाते हैं, अंदर घुसेंगे तो फिर खत्म, जाएंगे क्या है, 2-3 मीटर में तो हमारा काम उड़ जाएगा। लेकिन ये सारे देवताओं क्षीर महासागर में घुसे और घुटने तक पानी में खड़े हो गए, समुद्र के अंदर सागर, मतलब कितने विशाल शरीर उनका होगा। समुद्र के अंदर घुटने पर खड़े होकर के सब आज बहुत खुश हैं कि अब सार साथ में आए हैं, बड़े बड़े सब सीनियर डिवोटी साथ में हैं, आज तो काम बनेगा, हम आज प्रभु को देखेंगे। अब तक कोई देवता प्रभु को दर्शन नहीं किए थे, खिरदा किसी को विष्णु को भी ना, उनको भी दर्शन नहीं किए थे, इसलिए सब दर्शनाभिलाषी बड़े मन में प्लान करके आए थे उनके साथ में। खूब आज तो भेंट होगा, आज तो भेंट हो जाएगा सर के साथ। अभी तक तो फोन में भी नहीं बात हुआ था, टीवी भी नहीं देखे थे, सुने केवल, आज दर्शन होगा। तो इसी आशा में बड़े प्रसन्नचित होकर के थे ब्रह्मा रुद्र आदि के साथ में। तो प्रार्थना शुरू किए, पुरुष सूक्त पाठ, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहसाख्य सच, ओ पुरुष सूक्त देवताओं, तो बड़े अच्छा संस्कृत उनका ज्ञान है, पढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बिल्कुल ताल लय के साथ पढ़ने लगे, ब्रह्मा जी आंख बंद कर दिए पढ़ते समय, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का था ना, ये सारे उन्हीं के अंडर में आए हैं, तो उन्होंने इतने हाई भार वो समझ रहे थे, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उन्होंने बिल्कुल आंख बंद करके पापा का स्मरण किए। कोई बेटा अगर पापा को इतने स्मरण करके बुलाएगा तो पापा तो आएगा ही, है ना, नहीं तो इसे स्मरण के आंख बंद कर समाधि में चले गए, वर्णन आया समाधि चले गए। तो समाधि में चले गए तो बिल्कुल सारे देवता देखते हैं कि सार तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं, तो मतलब ही सीरियस मतलब तो काम बनेगा। कभी कभी आप लोग कोई जप क्लास में बैठ के जप करते हैं, हम लोग तो जप करते हैं, पता नहीं भगवान आएंगे कि भाग जाए। ये क्या भूत सवार हो गया, क्या हो गया उनका, इसी की उन कर रहा है भाई। अगर कोई जब बिल्कुल बैठाए, बिल्कुल आसन शांत मुद्रा आंख बंद करके ऐसे कर रहा तो बोलते हो कितने सीरियस है, बोलते ना नहीं, उनको कहीं बोलेंगे भूत लगाया कर नहीं, सो सीरियस। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बिल्कुल शांत मूर्ति चक्षुर बंद करके बिल्कुल ऐसी प्रार्थना सीरियसली करते हैं, सारे देवता बोलते हैं रियली आज तो काम बनेगा, सार तो आएंगे ही आएंगे, तो लेकिन सारा आए नहीं। ये भागवत वर्णन कहता है कि भगवान ब्रह्मा से फोन से बात की, फोन से बात की, यहां शब्द आया आकाशवाणी। मैं आज सुबह ही सोच रहा था आकाशवाणी मतलब, आकाशवाणी बाद में भी होगा कंसक के केस में, आकाशवाणी तो एवरीबॉडी विल पब्लिकली अनाउंसमेंट सभी सुनेंगे, लेकिन यहां आकाशवाणी हुआ लेकिन ओनली ब्रह्मा सुन पाए, तो मतलब डिफरेंट डेफिनेटली फोन ही बात हुआ, तो फोन बात हुआ, फोन की बात केवल आप सुन सकते हैं, स्पीकर फोन ना हो तो केवल आप ही सुन सकते हैं, जो कहा आप ही सुनेंगे दूसरा कुछ, तो केवल ब्रह्मा जी सुन पाए जो ठाकुर जी बोले। वो आकाशवाणी फोन को तो आकाशवाणी कहा जाता ना, उनको असली अर्थ में क्या बोलेंगे, दूरभाष, तो किसी में हंसेगा, किसी में हंसेगा, आकाश में हंसता भाई, इधर से चलता है वो आकाशवाणी, जो वाणी आकाश के द्वारा जाता है वही तो फोन, वही वायरलेस करो जो करो उसको आकाशवाणी। तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पास सेलफोन था, उनका नंबर था, हाँ केवल बाकी किसी का नंबर था नहीं, तो टिंटिंग हुआ लगा कान में तो वही सुन पाए, पापा के साथ बातचीत उन्हीं का ही हुआ, बोले बेटा ऐसे ऐसे बात है अब बोल दो सबको। तो ब्रह्मा जी केवल सुन पाए वो आकाशवाणी की, मतलब फोन का मैसेज उनके पास आया, सुने मतलब मैसेज नहीं आया था, बातचीत हुआ डायरेक्ट, सुने उन्होंने, सुन करके खुश हो गए, आँख खोले बोले ओ आ गया, पता हो बातचीत हो गया, बच सारा आए नहीं ना, आए नहीं, फोन में बात किए बिजी है वो नहीं आए। तो देवता ने रो पड़े, रुद्र इंद्र तक रो पड़े, बोले हमारा दिखाई दर्शन ही नहीं हो पाए ना, वो दर्शन नहीं कर पाए, वो केवल ब्रह्मा जी से फोन से बात कर लिए, और ब्रह्मा जी जो मैसेज से उनको फोन में जो बात हुआ वो अनाउंस किए, कि पापा ने बोले कि उनको पता है, धरा ज्वर के वो ज्ञाता है, उनको सारे धरती का जो कष्ट है जो उनको सब इनो से बिलती, उनको सब पता है और वो आने वाले हैं, बोल दिए कि पापा जी आएंगे, आएंगे जब हम देखेंगे, हाँ हो जब व्यक्त होंगे धरती पर तब देख सकते हैं, ऐसे उनके स्वर्ग में देख नहीं सकते, देवता रुद्र तक भी दर्शन नहीं कर पाते, और हम सोचते हैं हम देखेंगे, हम कौन सा गाय के गोबर है भाई तो उनका दर्शन खीरी सागर में इतने लंबा समय पुरुष सुक्त पाठ करके ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के तभी दर्शन नहीं हुआ, और सुन में नहीं पाया दर्शन की बात के, फोन में नहीं बात हो पाया ना, वो तो केवल ब्रह्मा के साथ हुआ, बाकी सब ऐसे वापस आए, आ करके ब्रह्मा जी ने बोले अब जाओ जदुवंश में, भगवान अब प्रकट होंगे, अब जदुवंश में सब अपने अपने स्वरूप में प्रकट हो जाओ, जन्म लो तब देखना देख पाएंगे, नहीं तो देख भी नहीं पाओगे, हाँ आप कुछ आप जानना देखना चाहते हैं इस रूप में फिर जाओ फटाफट। तो इस प्रकार आज के श्लोक अभी आता है इतने सारे के बाद, अब जब ये काम हो गया, ब्रह्मा जी ने सबको बता दिया अब जाओ जाओ अपने सब काम करो जल्दी से करो, तब ये काम हो जाने के बाद में भगवान सोचे मैंने बेटा को बोल ही दिया सब जाके तैयारी करें तब मुझे जाना होगा, भगवान अभी जाने का विचार जब किए, सबसे पहले ये श्लोक आएगा 23 नंबर 22 नंबर श्लोक में शायद, भगवान ने पहले बोले वासुदेव गृहे, बोले वासुदेव के घर में आऊँगा, मैं आने से पहले मेरे इंस्पेक्शन ऑफिसर सब जाए तो कड़ा संकर्षण पहले बलराम को भेज दी, बोले जाकर जाकर इंस्पेक्शन करो, देखो कि मेरा प्रोग्राम फिक्स हो रहा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं, जैसे कोई हर अफसर आते हैं तब फिर सब म्यूनसिपैलिटी अगर सब एक्टिव हो जाते ना, और फिर उनका बॉडी गार्ड लोग आते हैं कुत्ता लेकर सब चेक करते हैं, है ना, तभी तो प्रोग्राम बनता है मंत्रियों का। तो बलराम जी आ गए सुपर इंस्पेक्टर बन करके फाइनल चेक करने के लिए, जब से पहले से काम हो चुका था लेकिन फिर भी उनको मन नहीं माना, वो आए पर्सनली, इसलिए बोलते हैं पहले वासुदेव के घर में देवकी गर्भ में उनको पहले आना पड़ा। बाद में भगवान अभी सोचे कि अभी तो हमारे इंस्पेक्शन ऑफिसर अपना पर्सनल ऑफिसर गए चेकिंग होगा, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जाने से पहले ये बात कर रहे हैं क्या, विष्णुर माया भगवती जया सम्मोहितम जगत आदिश्य, विष्णु ने आदेश दिए, आदेश दिए मतलब उनको पहले तो बुलाए होंगे, चाहे फोन करके बुलाए चाहे किसके द्वारा बुलाए जो भी करो उनको बुला करके उनके सामने उनको ऑर्डर दिए, आदेश दिए उनको, किसको ऑर्डर दिए, विष्णुर माया, भगवान विष्णु आपने माया को आदेश दिए। वो माया कैसी, वो भी भगवती, वो भी दूसरा किसी का नहीं, उन्हीं की है। जो उनकी है उनके पोटेंसी उनके साथ है। हाँ भाई, जो सरकार है वो तो कहीं सरकार किसी में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी बैठे होंगे, उनके गवर्नमेंट पेपर में गवर्नमेंट साइन करके कोई सरकारी पेपर में कोई ऑर्डर आ जाए सरकार के मोहर लग करके, उनको ऑर्डिनरी मानेंगे? भले बिल्कुल फटा हुआ पेपर में क्यों ना हो, रही बाप रे बाप, गवर्नमेंट ऑर्डर है तो इतने ही पावरफुल माना जाएगा उसको। ठीक इसी प्रकार भगवान की जो माया है वो भी भगवान के ही शक्ति संपन्न है, इनके इतनी पावर उनका भी है। इसलिए भगवान माया को कहते मम माया प्रत्यया, मेरी माया है, मेरी जैसी पोटेंसी है, उसको कौन टैकल करेगा? मेरे से टैकल करेगा तभी तो मैं टैकल करूंगा, मेरा ही है वो। तो इसलिए भगवान की माया को किसी के शक्ति नहीं उनको चैलेंज कर ले। कोई बड़े बड़े ब्रह्मा लोकपाल तक कितने तपस्वी जन से कुछ भी कर ले नहीं। और एक शब्द आया, विष्णुर माया भगवती जया सम्मोहितम जगत, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत सम्यक रूपेण मोहित है। सम्यक मोहित मतलब बोलते अनंत काल से अनंत कोटि जीव अनंत करोड़ों बार जन्म होकर भी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्कूल कॉलेज पीएचडी डीएलटी सब करने के बाद भी यही समझते आई आम दिस बड़ी, मैं ये शरीर हूं, ये बद्ध धारणा उनका बना रहता कभी मिटता नहीं, क्योंकि जया सम्मोहितम जगत, ये मशीनरी वहां काम होता है, तू बेचारा करे क्या, रेगुलेटर यहां रेगुलेट करके रखा है, तू कितने हाथ पर पीट लो कभी मन में बैठ नहीं सकता। दिन में 50 बार पढ़ो लिखो याद करो आई एम सोल, आई एम आत्मा आत्मा आत्मा, एक थप्पड़ मारने से निकल जाएगा आत्मा। आत्मा को कभी कष्ट हो नहीं सकता है, आत्मा रोता नहीं मांगता नहीं कुछ नहीं, हो तो चिन्मय है, इतना सारा बोलो एक गाली दे दो खत्म, पूरा दिन भर के तैयारी सब खत्म। क्यों? जया सम्मोहितम जगत, जिस मोह से बचने के लिए प्राणी करोड़ों जन्म बिता चुका है लेकिन मिट बच नहीं सकता, ये कितने भयानक शक्ति है। क्यों? विष्णु माया संपूर्ण जगत को ऐसे मोहित करके रखा है, किसी के पल्ले किसके बस में बात के नहीं कि वो ठीक से समझ ले कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। भले हम 50 बार सुने बोले याद करे लिखे बोले भी दूसरे को सिखाए, यू आर नॉट बड़ी यू आर सोल, यू आर नॉट बड़ी यू आर सोल, लेकिन आधा सेकंड नहीं लगेगा बड़ी निकल जाएगा, सोल भाग जाए। क्यों? क्योंकि सम्मोहितम जगत, वो माया एक्टिवेट है, वो माया एक्टिवेट है। तो इसलिए सम्मोहितम जगत कहने के इसी जो जगत की संपूर्ण जगत के संपूर्ण जागति के प्राणी को अनंत कोटि प्राणी को हमेशा के लिए जो मोहित करके रखा है उस माया, बोलते हैं कि इसी माया ने आदिष्टा प्रभुण अंशे न, इस शब्द में बोलते हैं वो माया को नहीं, जो विष्णु माया वो बोलते हैं भगवान मेरी माया तो मेरी माया है, वो माया भगवान की माया कौन है? बोलते हैं जोग माया। और ये जिस जगत को सम्मोहित करता है बोलते हैं प्रभुण अंशेना, मतलब वो माया के एक पार्ट एक अंश वो महामाया जगत को सम्मोहित करके रखा है। वो फाइनल एनर्जी नहीं है ना। तो गोस्वामी आचार्य गण कहते हैं कि माया के दो फेज काम होता है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए हैं कि शक्ति तो एक ही है, विष्णु माया एकम एक अनंसा एकानंसा शक्ति का एक पावर है, लेकिन डाइवर्सिटी डाइवर्सन उसका यूटिलिटी कितने प्रकार का होता है। प्रभुपाद जी ने कूलर और हीटर का उदाहरण दिए हैं, बिजली कोई कूलर में कोई दूसरा बिजली आता है क्या, हीटर में कोई दूसरा बिजली काम करता है क्या? नहीं, वही बिजली वही वायरिंग है वही प्लग है वहीं से जाएगा, वहाँ में लगा दो क्योंकि कॉयल डिफरेंट है, ठंडा करेगा वहाँ कॉयल डिफरेंट है गर्म करेगा, एनर्जी तो एक ही है ना। बोलते विष्णु की एनर्जी एक ही है, वन पोटेंसी एक ही शक्ति है, इसलिए विष्णु माया एक शक्ति के लिए कहा गया। लेकिन सम्मोहित जगत, जगत सम्मोहित करने के लिए उसका कॉयल दूसरा है, ये जगत को सम्मोहित करता है, लेकिन अब भगवान के लोगों की बात होगा उसका कॉयल डिफरेंट हो जाएगा। तब वह कहते हैं कि क्यों विष्णु माया जगत कार्यार्थे संभविष्यति, बोले माया तो काम कर ही रहा था, उनके माया अपना काम कर रहा। फिर उनको अर्डर दे करके कार्यार्थ है, कौन सा ऐसे कार्य है जिसके लिए संभविष्य थी उनको विशेष पोटेंशियल लेकर आना पड़ेगा, कौन सा ऐसे कार्य है? ये कार्य कुछ नहीं, भगवान आना चाहते थे, भगवान आना चाहते थे। और आने के लिए पहले तो भाई साहब जाकर बैठे हैं अपने सीट पर, भाई साहब सीट पर बैठे हैं, बोले पहले उनको खाली कराना पड़ेगा सीट। बोले ओ माया काम नहीं कर सकता, ओ महामाया ये काम नहीं कर सकते, भाई साहब के साथ डीलिंग उनका काम नहीं, उनका तक उनका पहुंच नहीं, वो डरेगी। और जब मैं प्रकट होकर के गोकुल में जाऊंगा, गोकुल में सब कुछ लाना पड़ेगा, तो नंद दसुदा आदि को निद्रा से मोहित करना ये भी इस माया का काम नहीं, जो जिसकी माया में हम चक्कर में पड़े हैं, वो माया वहां तक नहीं जा सकता। भगवान और भगवान के निजजन के साथ वो माया नहीं जा सकता। तब तो आचार्यगण कहते हैं वो माया के कैसे काम करता है ना, उन्मुख और विमुख, सम्मुख और विमुख दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जो भगवत उन्मुख जन, जो भगवान के हो चुके हैं, दुनिया को देखते नहीं, मुंह मोड़े नहीं, वहां केवल जोग माया काम करेगा, वो भगवान से जुड़ने की हेल्प करेगा। और जो भगवान से मुंह मोड़ दिए विमुख हो चुके हैं, वहां फिर वो माया एक्टिव नहीं होगा, वो महामाया एक्टिव हो जाएगा विमुख लोगों के पास। मतलब महामाया से, महामाया के एनर्जी के अंदर आने के लिए विमुख होना पड़ेगा, और जोग माया के शक्ति को पाने के लिए उन्मुख होना पड़ेगा। जब तक उन्मुख नहीं हुए हैं तब तक जोग माया हमको करेगा नहीं। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं महात्मानं स्तुवांग पार्थ दैविंग प्रकृति मा आसित, ये भौतिक प्रसूति दैवी प्रकृति अलग है, ये दैवी प्रकृति के अंदर जो चले जाते हैं तो उनका और बाकी कुछ काम ही नहीं करते हो। महात्मा जो बन जाते हैं, जो मेरे लोग बन जाते हैं, महात्मानं स्तुवांग पार्थ दैविंग प्रकृति मा आसित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादि अव्यपम, तो मेरा ही भजन करेंगे और कुछ करेंगे नहीं हो, क्योंकि दैवी प्रकृति के अंदर आ गए, उनके खान पान पोषण तो दैवी प्रकृति करेगा, वो जुगाड़ करेगा, जोग माया जोग कराएगा, उन मेंटेन करेगा। लेकिन जो वहाँ नहीं गए, महाता नहीं बने, दुरात्मा है, विमुख जन है, उनके लिए मेरे ये जो महामाया है वो उनके काम करेगा। ये जो हम लोग सब महामाया का बढ़ती है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि खूब डंडा मारता है, खूब करता है, इतने कष्ट देता है, इतने कष्ट देता है, तो कष्ट देता है इसे जल में जन्म डालने, तो इस प्रकार की माया है। तो भगवान में आएंगे गोकुल में, जो गोकुलेश्वरी है वो भगवान के जोग माया के इंचार्ज है, उनके जानने से, उनके शरण लेने से फिर काम बन जाए। लेकिन जो उनके शरण नहीं लिए हैं, अब मथुरा में कंस को मोहित करना, देवकी के बेटी के रूप में प्रकट होना, ये जो मोहित कार्य वो जोग माया के काम नहीं, वो महामाया के कार्य। तो इसलिए भगवान ने माया को डबल एक्शन के लिए ऑर्डर दे दिए, बोले ये काम सब करना है जा करके, आगे चल करके रासलीला आदि करेंगे, बोले इसमें उसका भी काम आएगा, और भी कई मोहित करना किसी को, वो कई प्रकार के काम आएगा। दुर्योधन शल्व जब भी भगवान सामने खड़े थे, लेकिन भगवान के रूप मानते थे जादव है, ग्वाला है, वो हो नहीं सर, यहाँ वो माया काम करता था। तो बिल्कुल स्थान काल पात्र के हिसाब से माया के काम करता है। हम लोग को अगर माया से बचना चाहते हैं, सबसे पहले माया को पहचानना होगा भाई। आज जो तार में शक मारता, शक खाकर परेशानी हो, झील रहा हो, इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हो, तो पहले जानो कि करंट फ्लो कर रहा है तार में, उसे बचो, तो पहले माया को पहचानना होगा। तो इसलिए भगवान ने सृष्टि के सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा को जो प्रकट किए, अपने बेटा को बनाए, और उनको जो ज्ञान दिए, जो चतुष्लोकी ज्ञान जिसको कहते हैं, सबसे पहले नॉलेज दिए, उसमें ब्रह्मा जी को बोले तो मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन उसके तुरंत बाद अपने माया के ज्ञान दिए। इतने जरूरी है माया को समझना, नहीं तो छूट नहीं सकते। सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिए, उसमें वो ज्ञान देते समय भगवान ने कहते हैं रिते अर्थ जत प्रतियेत न प्रतियेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो माया जथाभासु जथातमः। उदाहरण के साथ समझाते हैं भगवान ने माया के बारे में, क्योंकि माया को जानना बहुत ही आवश्यक। सेकंड चतुर्श्लोकी है, केवल चार श्लोक में संपूर्ण भौतिक आध्यात्मिक संपूर्ण वैदिक ज्ञान को डाउनलोड करने वाले भगवान स्वयं बिल्कुल फास्ट अपना आईडी दिए, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दिए, इमीडिएट जो ज्ञान की शुरुआत की वो है माया की ज्ञान। माया के ज्ञान प्राप्त करना इतनी इंपोर्टेंट है, इसलिए भगवान सबसे सेकंड श्लोक में बोलते हैं रित अर्थ जत प्रतीयत। रित मतलब सत्य, इस संसार में जो सच्चाई दिखाई पड़ता है तुझे, एवरीथिंग बोलते हैं फैक्ट, ये सच्चाई है। रित अर्थ जत प्रतीयत, जो प्रतीति होता है बिल्कुल सत्य की तरह, लेकिन उसका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। न प्रतीयत च आत्मनि, मेरे बिना भी हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरे तो अंडर हैंड है ही, लेकिन प्रकट नहीं दिखता है, उसको कैसे जानो। तद विद्यत आत्मनो माया, वो मेरी माया करके जानो। वो माया भी जब कहते हैं बोलते मेरी माया है, मैं हूं उसके साथ, क्यों मेरा ही है, वो मेरे से अलग नहीं है। कैसे समझ पाना, जथा आभास जथा तम, इसको ऐसे समझा जैसे कोई सूरज अभी आसमान में उगा, चाहे जल पात्र में रखो, जलाशय में देखो, कोई में पानी कोई पात्र में रखा है चाहे उसमें देखो, या कोई पानी की तालाब वगैरह हो उसमें जाकर देखो, और सूरज उसमें रिफ्लेक्ट होकर के आपके घर के दीवार पर सूरज दिखता है, आप सूरज को देखकर क्या कहेंगे, सूरज उग गया, धूप आ रहा है, घर में धूप आ रहा है, सूरज आ रहे, सूरज से नहीं आ रहा है, सूरज से आया हो पानी के अंदर, और पानी से रिफ्लेक्ट होकर के इधर आया, और वो आभास है, लेकिन ये आभास है, लेकिन सूर्य के साथ कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सूर्य के बिना उसका आभास नहीं होता। अगर आसमान में सूर्य ना हो, यहाँ दीवार में सूर्य दिखाई पड़ेगा तो ना, उनके बिना भी नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। बड़े रहस्यमय ज्ञान है, लेकिन है फैक्ट। बोलते सबसे पहले इसी को जानना पड़ेगा, ये माया के परिचय के बारे में भगवान बताते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माया। तद विद्यात, उसी को जानो, आत्मनो माया, वो मेरी माया है। वो दिखाई पड़ता है जैसे तमह अंधकार। भगवान सेकंड उदाहरण दिए, एक तो रिफ्लेक्शन बताए आभास, और दूसरा उदाहरण क्या, और थोड़ा हमारे जैसे मूड व्यक्ति को अंधकार बोलते हैं, अंधकार भी, अंधकार हम जानते हैं डार्कनेस, अंधकार अंधार क्या है, अंधकार जो बहुत समझदार व्यक्ति अंधकार को क्या कहेंगे, अंधकार है, लेकिन जो समझदार है वो क्या कहेंगे, अंधकार इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट, आलोक की एब्सेंस क्या बोलेंगे, अनुपस्थिति ही अंधार है ना। नहीं भाई, केक घर में 10,000 साल से अंधकार भरा पड़ा है, 10,000 साल से पूरे घर भरा है अंधकार से। आप इस घर में घुस गए, जा करके लाइट जला दिए, बड़ा बत्ती लिए थे साथ में जला दिए, तो जो 10,000 साल से अंधकार के स्टक था उसको निकालने कुछ साल तो लगेगा, लगेगा। जैसे लाइट ऑन किए इस सेकंड भी नहीं लगेगा वो अंधकार गया। भैया अरे 10,000 साल से था, वो एक सेकंड में कैसे चला गया, क्योंकि अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं है। अंधकार का अपना परिचय क्या है, व्हाट इज द आईडी प्रूफ ऑफ अंधकार, अंधकार का परिचय क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट, करेक्ट। अंधकार का अपना आईडी कुछ नहीं है, आलोक का बिना अपना परिचय दे ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंटली वो अपना परिचय देने के लिए समर्थ नहीं है। इसी प्रकार माया भी अपने इंडिपेंडेंटली परिचय देने में समर्थ नहीं है। आत्मा बोल जा, मैं नहीं हूं वही माया है, मैं हूं तो माया नहीं है। जैसे लाइट और अंधकार, लाइट जला तो अंधकार रह ही नहीं सकता, अंधकार है मतलब लाइट है ही नहीं, ठीक है ही भगवत माया। माया है मतलब मैं नहीं हूं, मैं हूं माया कैसे रह सकता भैया, ये उदाहरण समझ लो। मतलब वो अंधकार मेरे ऊपर टिका है, लेकिन मेरे से कुछ अलग नहीं है। अंधकार लाइट से अलग तो है ना, लेकिन लाइट के बिना अंधकार हो ही नहीं सकता। ये साइंस की समझ, लेकिन बहुत धीरे से बैठ के मनन कीजिए, अंधकार कैसे वस्तु है, लाइट के बिना हो ही नहीं सकता। जब लाइट का परिचय नहीं है, अंधकार का परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि अंधकार का परिचय देने के लिए लाइट के नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइट है ही नहीं तभी अंधकार है। तो लाइट के नाम लिए बिना अंधकार को समझने बोल ही नहीं सकते, अपन पकड़ कर नहीं सकते। लेकिन लाइट अगर होगा तो अंधकार हो भी नहीं सकता, कमाल है। वो होगा तो हो ही नहीं सकता, उनके बिना भी हो नहीं सकता। इनके बोलते रीति अर्थ जत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनी, ठीक है ऐसा ही है, मेरे बिना उनका स्थिति ही नहीं है और मैं रहूंगा तो स्थिति भी हो ही नहीं सकता। यही भगवान के खेल है, ये ही माया, ये सम्मोहिनी जगत, ऐसे माया भगवान की ऐसे शक्ति क्रिय है। करोड़ों करोड़ों जन्म से सर फाड़ करके, पोथी पढ़ पढ़ करके, तपस्या करके, साधन करके उनको समझ लूं, बच जाऊं, अभी तक नहीं समझ पाया, अभी समय नहीं। नहीं तो एक से एक भरी भरी उदाहरण पड़ा है बड़े बड़े ज्ञानियों के, वो घमंड आ जाता। तो कैसे बचे, भगवान बोल्ड करके एक शब्द बोले, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, इस माया से तू बचना चाहता है तो एक ही उपाय है, ओनली वन, मेरे शरण में आना पड़ेगा। कोई देवता, कोई शक्ति, कोई पावर, कोई उपाय काम ही नहीं कर सकते। महात्मा लोग कभी कभी एक छोटी उदाहरण स्टोरी के द्वारा उसको समझाते हैं। जैसे आप लोग कभी कोई कोई बड़े बड़े आदमी के घर में चले जाते हैं, लाल लाइट वाले बड़े आदमी जो होते हैं, अब उनके घर में तो आजकल, पहले बड़े बड़े राजा महाराजा घर में स्वागत फल लेता है, साधु संन्यासी आओ स्वागतम, लेकिन आजकल स्वागतम नहीं लेता है, क्या लगता है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। लेकिन जिनको डोनेशन का चक्कर पड़ा है, जन्माष्टमी आ रहा है, वो तो भाई घुस ही जाएगा, और सार फोन फोन करके मिलते ही नहीं, आप मंगल आरती के बाद निकल जाता हूँ, अभी तो 8 बजे उठते मिल जाएंगे, अब चला गया। गेट खुला था, कभी कोई बड़े साहब लोग क्या करते हैं ना, सुबह सुबह वो कभी कभी खुद लेकर जाते हैं कुत्ता को टॉयलेट कराने के लिए, नहीं तो उनके किसी को लगाते हैं भाई हम करा लो, कहाँ हम लोग में लेट होगा। तो गेट खुला है, कुत्ता अपना काम करके आया है, वो घूम रहा है, तो कुत्ता घूम रहा है तो गेट में चला देना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो माया एक्टिव है, एक्टिवेट है। तो आपको तो माया के चक्कर, आपको तो डोनेशन के चक्कर में था, आप सीधा गए बाइक पार्किंग के, घुस गए, जैसे गेट के अंदर हो गए, भैया माया एक्टिव तो था, ये कुत्ता खुला था, वो तो आलसी से अंडक था, वो ज़्यादा हो हल्ला नहीं करता, साइलेंट अटैक करता है, एक्शन लेता है, तो सीधा आया, पंजा लगाया और गले के अंदर, गले को सीधा आपने कब्जे के अंदर लेने की कोशिश किया। आप तो थर 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 पसीना उदगा कांप गए, जिस प्रभु जी के घर था उनको जानते, कई बार फोन के वो चिल्ला कर बोले, प्रभु जी बचाओ, खा गया मुझे कुत्ता, ऐसे बिकल होकर के ऐसे चित्कार किए, वो सोए थे बेडरूम में, तुरंत उनका, अरे प्रभु जी लोग आ गए क्या, अरे कुत्ता तो खुला था खा गया, तब वहीं से बेड में सोते सोते, ए मोती चुप, वो कुत्ता का नाम था मोती, ऐसे वहीं से चिल्ला देंगे तो अभी वो कुत्ता क्या करेगा, उतर आएगा, छोड़ देगा, जब एक्शन पर चला गया था बिल्कुल ही नीचे उतर जाएगा। अब तो दौड़ कर आएंगे, बेड से उठ करके मुंह भी नहीं धोए दौड़ कर आएंगे, अरे प्रभु जी आप कैसे आ गए यार, कुत्ता आप पता करके आना चाहिए था ना, ना मुझे क्या पता डर खोला था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तब तो आकर आइए आइए साथ पकड़ कर ले गया, और कुत्ता देखा कि साहब ने उनको साथ में पकड़ कर ले गए अपने घर में बैठा, दोबारा वो जाएगा, वो कुत्ता क्या करेगा, पूछ हिलाएगा उनको, आइए सुनने का, ठीक है ही माया भगवान के कुत्ता है, उसको छोड़कर बैठे हैं। अगर हम माया आपको अटैक करता है तो ऐसे आर्त चित्कार करुण फुकार करना चाहिए, बचाओ खा गया तुम्हारे कुत्ता, तो वो वैकुंठ से बैठ करके आवाज मार दे, चुप, उनको यहाँ आना नहीं पड़ेगा अवतार लेने के लिए, वहीं पे बेडरूम में ही एक आवाज मार दे तो यहाँ सेट हो जाएगा, और एक बार आए तो सदा के लिए पूछ ही लाते रहेगी, फिर कुछ काम नहीं करेगी। यही है मम माया दुरत्तया, जब तक हम इसी प्रकार उनको ऐसे आर्त फुकार ना करें, उनको तक सुनाई नहीं पड़े फोन की आवाज़, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो तो आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए वैकुंठ तक, वहीं से वो उनके एक डांट मार दे, तब माया सवा, हरे कृष्ण। तो माया को जानना चाहिए तब तो भगवान आवेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न किसी का क्या होगा, ना ज्यादा होगा ना नहीं होगा, है तो बताया मैंने। हाँ हाँ ज्ञान, अज्ञान को भी अंधकार बताया गया, ज्ञान के लाइट कहा गया, ज्ञान लाइट है अज्ञान अंधकार है, है ना, ज्ञान अंधकार। हाँ जी,
तो
उनको पूछना पड़ेगा ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं, उनको पूछो क्यों दो कम कर दिए क्यों। हाँ तो हम कम नहीं थोड़ी किए थे, कम जो किया उनको पूछो भाई तुम क्यों कम दिया उनको, जो दिया उनको पूछना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं दिया था, मैं होता तो पूरा पूरा दे देता। हाँ उनको पूछना पड़ेगा। तब तक वेट करना पड़ेगा। है ना, नहीं प्रभु जी ने क्या गड़बड़ की उनको पूछना पड़ेगा ना। यस हाँ वो घोंसला बनाना ये मन का ही एक मैनिफेस्टेशन है, इस प्रकार से काम कर लेते हैं, है ना। जिस प्रकार पशुओं के अंदर जो विज्ञानमय कोष है वो जिस प्रकार काम करते इतना नहीं कर पाते बेचारे, निश्चित। हाँ जी क्या माता जी क्या पूछते। हाँ तो परमानेंट सोल्यूशन के बात में कहा, और नहीं एक बार कुत्ता के साथ परिचय आपका हो गया फिर दोबारा काट ही नहीं सकता आपको, यही तो मैं उदाहरण बताया, समझे नहीं क्या। एक बार मालिक के साथ दोस्ती हो जाए तो उनका कुत्ता डिस्टर्ब करेगा कितने बार जो पूछ ही लाएगा, फिर मैं भजा नहीं सकता, पावर नहीं उसका, है ना।
क्या
क्या माया,
माया मेरे को स्पष्टीकरण नहीं हुआ, माया और आपने ये बहुत अच्छा देश देना चाह रहे हैं, अभी तक समझ नहीं आया कि माया,
यही माया के कारण समझ नहीं आता। यही प्रमाण है इसका।
हाँ मैं यहाँ उपस्थित हूँ, देर से उपस्थित हूँ, माया को क्या प्रत्याहार देना चाहिए,
माया को प्रत्याहार करने का शक्ति आपका है। तो फिर तो वो नहीं हो पाएगा, इतमान लो, क्योंकि माया अभी ऐसे है कि हमारा बस नहीं चलता, कोई नहीं कर सकता, हम क्या ब्रह्मा रुद्र इंद्र पर्यंत नहीं कर पाएंगे, है ना, यही तो मैं बता रहा था, हमारे बस की बात नहीं है।
हाँ
क्या कर्म करना चाहिए, फंसे हुए हैं बुरी तरह से, पता ही नहीं हम कौन है क्या करेंगे। भाई ये करताल बनाया गया बजाने के लिए, और करताल में आप खाएंगे, इस काम के लिए थोड़ी बना था। तो पता होना चाहिए क्या किस प्रोजेक्ट के लिए आप बने हैं, अब पता है, यही तो पता नहीं है, यही माया के कारण। तो जब तक माया नहीं छूटे आपको पता नहीं चलेगा हु आर यू, गलत हुई में पड़े रहेंगे, क्या कार्य करेंगे वो तो पता होना चाहिए, वो तो कार्य के बारे में पता ही नहीं है हमको, वो ज्ञान ही नहीं है, माया ज्ञान है ना। एक ही घंटा में माया को नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए बहुत घंटा चाहिए। हम अगर माया के बारे में चर्चा किए थे 5 दिन तक, तो एक एक इधर इधर घंटा तभी भी नहीं कंप्लीट हो पाया, माया पूरा जगत को बस करके रखा है, किसी तो नहीं हो सकता है।